स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 20 जून और दिन सोमवार। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक दिया विवादित बयान, कहा अपराध रोकने के लिए नागरिकों की प्रोफाइलिंग होनी चाहिए।
I think profiling is something that we're going to have to start thinking about as a country, and other countries do it. And you look at Israel.
भारत का दावा, एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा है चीन। भोजपुरी फिल्मों में क्यों हिट हो रहा है पाकिस्तानी कनेक्शन?
दो वर्षों में हमारे यहाँ जो माहौल एक बना है, राष्ट्रीयता, छद्म राष्ट्रीयता, किसी खास जानवर के मांस को लेकर इसको भुनाने की कोशिश करते रहते हैं ऐसी जो फिल्में बनाने वाले।
अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रभात पांडे से। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में मुसलमान नागरिकों की प्रोफाइलिंग होनी ज़रूरी है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। ट्रंप ने हाल ही में ऑरलैंडो में एक गे क्लब में हुई गोलीबारी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमान नागरिकों की प्रोफाइल अपराध और आतंक की घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी है। ट्रंप के इस बयान की उनके विरोधियों ने यह कहकर आलोचना की कि ये अमरीकी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इराकी सेना के फलूजा शहर पर कब्जे के बाद भारी संख्या में नागरिकों के पलायन से मानवीय आपदा का खतरा पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायता कार्यकर्ताओं ने ये चेतावनी जारी की। फलूजा को इस्लामिक स्टेट यानी आईएस के कब्जे से छुड़ाने के लिए इराक की सरकार ने 4 हफ्तों तक सैन्य अभियान चलाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक इस संघर्ष के बाद करीब 80,000 लोग फलूजा छोड़कर चले गए हैं। सहायता कार्यकर्ताओं को शहर से बाहर बने शिविरों में रह रहे लोगों तक खाना, पानी और दवाइयां पहुंचाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये शिविर लोगों से ठसाठस भरे हुए हैं। यूरोपीय फुटबॉल संघ यूएफा ने यूरो 2016 में हंगरी, बेल्जियम और पुर्तगाल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। इन देशों के समर्थकों ने हुड़दंग और उपद्रवी बर्ताव की वजह से तीनों देशों के फुटबॉल संघों पर आरोप तय किए गए हैं। हंगरी की फेडरेशन पर उसके समर्थकों की भीड़ में गड़बड़ी फैलाने, आतिशबाजी करने और आइसलैंड के साथ मैच ड्रॉ होने के बाद मैदान पर चीज़ें फेंकने के आरोप तय किए गए हैं। पुर्तगाल पर ऑस्ट्रिया के साथ मैच बराबरी पर छूटने के बाद मैदान में धावा बोलने के आरोप तय किए गए हैं। यूएफा पहले से ही तुर्की, अल्बानिया, रोमानिया और क्रोएशिया के खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोपों की जांच कर रहा है। इस बीच क्रोएशिया के आंतरिक मंत्री व्लाहो ओरपिक ने कहा है कि क्रोएशिया का कोई भी फैन हुड़दंग करते पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो उपद्रव करने की मानसिकता है उस पर फौरन रोक लगानी होगी। इससे क्रोएशिया की दोस्ताना और सुरक्षित देश होने की छवि को धक्का पहुंचता है। सुनने वाले सुन लें और समझ लें, हम क्रोएशिया की इस छवि को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ये थे क्रोएशिया के आंतरिक मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरियाई कार्यकर्ताओं का कहना है कि तुर्की के सीमा सुरक्षा बलों ने कम से कम 8 सीरियाई शरणार्थियों को मार गिराया है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। ब्रिटेन स्थित संस्था द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि ये घटना शनिवार रात की है, जब इन लोगों ने सीरिया से तुर्की में घुसने का प्रयास किया। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है जून की 20 तारीख और दिन सोमवार, और अब वक्त हो चला है 6:33:44। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका में अपराध और चरमपंथ को रोकने के लिए नागरिकों की प्रोफाइलिंग होनी चाहिए और इसको शुरू करने की दिशा में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि नस्ल, जाति और धर्म के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचना कि कोई शख्स समाज के लिए खतरा हो सकता है या नहीं। ट्रंप के आलोचकों ने उनके इस बयान की निंदा की है और कहा है कि इससे मुस्लिम समुदाय में नफरत की भावना बढ़ सकती है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का साफ सुनिए प्रभात पांडे से।
अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप का एक और विवादित बयान, जिसमें उन्होंने नागरिकों की प्रोफाइलिंग की बात कह डाली। समाचार चैनल CBS से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। हाल ही में ऑरलैंडो में एक गे क्लब में हुए हमले का जिक्र करते हुए जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो अमरीका में मुस्लिम नागरिकों की प्रोफाइलिंग के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, तब ट्रंप ने कहा कि ये जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा,
I think profiling is something that we're going to have to start thinking about as a country, and other countries do it. And
मुझे लगता है कि पूरे देश को प्रोफाइलिंग के बारे में सोचना शुरू करना होगा। इसराइल और दूसरे देशों को देखिए, वो सफलतापूर्वक इस चीज को कर रहे हैं। वैसे प्रोफाइलिंग का मैं प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन तर्कपूर्वक सोचें तो हमें इसकी जरूरत है। ये इतनी भी खराब बात नहीं है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की रेस में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप के ये शब्द थे। न्यूयॉर्क में जन्मे मुस्लिम नागरिक ओमर मतीन ने ऑरलैंडो के एक समलैंगिक क्लब में गोलीबारी की थी, जिसमें 49 लोगों की जानें गई थीं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम समुदाय पर लगातार हमले कर रहे हैं। तब ट्रंप ने ऐसे सभी देशों के नागरिकों के अमरीका में आने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिनके नागरिक कभी न कभी अमरीका में किन्हीं चरमपंथी गतिविधियों में शामिल रहे। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात भी कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप के विरोधियों ने उनके इन सभी प्रस्तावों का विरोध किया और कहा कि इससे अमेरिका में मुस्लिम समुदाय और ज्यादा अलग थलग पड़ जाएगा, जो अमेरिकी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
तो डोनाल्ड ट्रंप का एक और विवादित बयान, बता रहे थे प्रभात पांडे।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
रविवार यानी कल भारतीय विदेश मंत्रालय की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि चीन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG में भारत की सदस्यता का विरोध नहीं करता है।
जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा, चाइना क्राइटेरिया प्रोसेस आदि की बात कर रहा है। मुझे लगता है अभी 23 तारीख में समय है और हम आशावादी हैं कि हम चीन को भी इसमें मनाने में कामयाब हो जाएंगे। और बाकी जो देश जिनसे बात हो रही है, जैसे 23 देशों से तो मेरी ही बात हुई है, तो उनमें भी दो एक ने कुछ जिज्ञासाएं जाहिर की, लेकिन बाकी 21 देशों ने सीधे सीधे सपोर्ट करने की बात की। तो मुझे लगता है कंसेंसस बन रहा है और शायद कोई देश उस कंसेंसस को ना तोड़े और इस बार NSG की मेंबरशिप हमें मिल जाए।
दरअसल सुषमा स्वराज के इस बयान की इसलिए अहमियत है क्योंकि पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय जगत में आई खबरों से ऐसा लग रहा था कि चीन भारत की राह में बाधा खड़ी कर सकता है। चीन ने आधिकारिक तौर पर यह ज़रूर कहा है कि पाकिस्तान को भी NSG की सदस्यता दी जानी चाहिए। पाकिस्तान ने बाकायदा NSG की सदस्यता के लिए आवेदन भी दिया है और यह भी कहा है कि उसकी दावेदारी भारत से ज़्यादा मजबूत है। हमारे साथी निखिल रंजन ने रक्षा मामलों के जानकार कमोडोर सी उदय भास्कर से बातचीत की और पूछा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस बयान का आखिर वो क्या मतलब निकालते हैं।
लगता है कि भारत और चीन के बीच में एक प्रकार का क्वाइट डिप्लोमेटिक चैनल्स के आधारित कुछ कंसल्टेशन हो रहा है। इसका हम निष्कर्ष इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हाल में भारत के जो विदेश सचिव हैं डॉक्टर जयशंकर, वो काफी एक अनएक्सपेक्टेड उन्होंने ट्रिप किया है बीजिंग में और वहाँ पे लगता है कि अपने फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे उन्होंने बातचीत किया है और लगता है कि NSG के बारे में जो भी मुद्दे चीन ने उठाया है उसके बारे में लगता है कुछ दोनों पक्षों के बीच में बात हुई है। इसलिए शायद सुषमा जी ने यही कहा कि विरोध नहीं कर रहा है, तो अर्थात ये कि कुछ प्रोसीजरल इश्यूज के ऊपर डायलॉग की बात संकेत हमें लग रहा है। और इसमें एक चीज मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते ग्लोबल टाइम्स, जो कि बीजिंग का एक अंग्रेजी अखबार है, बार बार कहा जाता है कि वो पार्टी और सरकार के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं उनकी जो राय वो प्रभावित करता है, उन्होंने कहा कि भारत को NPT संधि के ऊपर जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे NSG में शामिल नहीं हो सकता है और उन्होंने इस प्रकार के प्रोसीजरल मुद्दों को उठाया है। पर ये एक प्रकार से बेबुनियादी है क्योंकि जितने भी लोग NSG और NPT को जानते हैं बार बार वो उदाहरण देते हैं कि जब NSG शुरू हुआ था, ये बात सही है कि भारत के विस्फोट के बाद NSG शुरू हुआ था, 1974 की बात है, परंतु उस वक्त जब उन्होंने फाउंडिंग मेंबरशिप की बात की, फ्रांस को शामिल किया गया था, जबकि फ्रांस एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं था। फ्रांस के पास परमाणु हथियार थे, उन्होंने एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया था। फ्रांस ने हस्ताक्षर किया था 1992 में। तो अर्थात ये कि अगर शक्तिशाली देश इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि किसी भी देश को वो एनएसजी के अंदर शामिल कर सकते हैं, तो ये राजनीतिक और सामरिक मुद्दों के ऊपर निर्णय लिया जाता है। तो ये जो प्रोसीजरल बात है एनपीटी, मेरे ख्याल से एक प्रकार का ये जो कहते हैं कि इसमें उतना आर्ग्यूमेंट में उतना ना लॉजिक है ना उसका दम है।
जब पाकिस्तान ने एनएसजी में सदस्यता के लिए अपना आवेदन किया तो उसने कहा कि उसकी दावेदारी जो है वो भारत की तुलना में ज्यादा मजबूत है, ये किस आधार पर कहा होगा उन्होंने?
ये बड़ा अजीब स्टेटमेंट है सर, क्योंकि अगर आप देखें एनएसजी, मैं मानता हूं कि वो उसका एक जियोपॉलिटिकल जो कहते हैं फाउंडेशन या बेसिस है, पर धीरे धीरे एनएसजी, एनपीटी, एमटीसीआर वगैरह सब प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए, और सबसे बड़ा चिंता इस वक्त यह है कि कोई भी ये हथियार हो या सामग्री किसी गैर राष्ट्र गुट के हाथ में पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा चिंता था कि अमेरिका जो है राष्ट्रपति बुश साहब के ज़माने पे 2003 में इराक के ऊपर उन्होंने हमला भी कर दिया और उन्होंने तीन बिंदुओं को रेखांकित किया था। एक, जो देश महाविनाशक हथियार की खोज में है, दूसरा, जो देश दहशतगर्दी को समर्थन दे रहा है, और तीसरा, जिस देश का जो हुकूमत है उसको एक प्रकार से आप डीवियंट स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि वो या रेडिकल इस्लाम या दहशतगर्दी गुटों को इस प्रकार का समर्थन दे रहे हैं और वो लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ हैं। तो इन तीन कारणों की वजह से उस वक्त अमेरिका ने इराक को घोषित करके हमला कर दिया, जबकि हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि 1990 से लेके आज तक 25-26 साल से पाकिस्तान इन तीनों कंडीशंस का एक प्रकार से वो पूरा करते हैं। और तो ये सब होते हुए जब एनएसजी के सदस्य पाकिस्तान का जो एप्लीकेशन या केस को वो समीक्षा करेंगे, कई लोगों ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हम बहुत ही असंतुष्ट हैं। और अमेरिका के एक कांग्रेसमैन है, मुझे याद है जब पाकिस्तान का केस आया था एनएसजी के सामने, उन्होंने कहा हमारे लिए तो कंडीशंस बड़े स्पष्ट हैं, अगर पाकिस्तान का नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड और जिम्मेदारी का रिकॉर्ड भारत जैसे है तो हम जरूर उनको शामिल करेंगे। तो हम इस एप्लीकेशन को 30 साल के बाद समीक्षा करेंगे, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि 1975 से लेके 2005 तक बिल्कुल स्पॉटलेस है, यानी कि कोई उंगली नहीं उठा सकता है भारत के खिलाफ। तो उस वक्त गैरी एकरमैन साहब ने बड़ा अच्छा एक बयान दिया था कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड आप 30 साल का आप समीक्षा कीजिए, 2016 अगर वो अभी स्वीकार करेंगे कि दहशतगर्दी को समर्थन देना बंद करेंगे, एक्यू खान नेटवर्क का खुलासा करेंगे वगैरह वगैरह, तो 2046 में एनएसजी जो है वो पाकिस्तान के एप्लीकेशन का समीक्षा कर सकता है।
ये थे कमोडोर सी उदय भास्कर। झारखंड में धनबाद के तोपचांची थाना में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर उमेश कश्यप की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। थाने में ही उनका शव फंदे से लटकता मिला था। रविवार को उनके परिजनों और गांव के लोगों ने शव को राजधानी स्थित रांची स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया था। सरकार ने पूरे मामले में जाँच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही धनबाद के 3 पुलिस अधिकारियों को तत्काल रांची तलब कर लिया गया है और वहां के एसएसपी को जांच से अलग रखा गया है। पूरी जानकारी के साथ रांची से नीरज सिन्हा।
उमेश कच्छप रांची जिले के नगड़ी गांव के रहने वाले थे। सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग को लेकर दोपहर में बड़ी संख्या में लोग उनकी लाश के साथ मुख्यमंत्री आवास के गेट पर धरने पर बैठ गए थे। भीड़ में उनकी पत्नी निढाल पड़ी थी। इस मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और प्रथम दृष्टया वो ये इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन उमेश कच्छप के परिजन और गांव के लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। पुलिस अधिकारी का भतीजा विपिन कच्छप कहते हैं,
सबसे पहली बात तो उसने हमें ये लगता है कि खुदकुशी की ही नहीं, उनका प्लान मर्डर था और उसको खुदकुशी का रूप दिया जा रहा है। और ये उसका हैंगिंग फोटो अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा या तो हम उपलब्ध करा देंगे, उसको देखने से ये सब पता चलता है। एक कॉमन आदमी बता देगा कि ये स्वेच्छा से रस्सी पर नहीं लटके हैं, इसको कोई पहले से प्लान करके मार के या उसको बाद में रस्सी में लटकाया गया है।
गौरतलब है कि पिछले 13 जून को धनबाद स्थित हरिहरपुर के थानेदार संतोष रजक पर एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारने का आरोप लगा था। उमेश कच्छप के परिजनों का कहना है कि इस घटना के बाद से वे तनाव में थे। जब वे लोग लाश लेने थाने पहुंचे थे तो पुलिस वालों का रवैया ठीक नहीं लगा और प्राथमिकी दर्ज कराने में भी उन्हें मशक्कत करनी पड़ी।
फोन पर बताया था कि गोलीकांड हुआ है या ट्रक ड्राइवर को गोली मार दिया है और हम उसमें थे भी नहीं और उस पर हमको भी फंसाया जा रहा है, मेरा भी नाम दे दिया गया है और एसपी ग्रामीण एसपी है हमसे स्पष्टीकरण मांग रहा है क्या दें, इस तरह से बात बोले थे। बहुत टेंशन में है, प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर उसका आत्महत्या के लिए काफ़ी नहीं था, ये कुछ और मामला है, इसी के लिए हम लोग सीबीआई जांच।
जबकि पुलिस अधिकारी की एक महिला परिजन का कहना है,
वो अभी डिप्टी में गया था तो कैसे वैसा होगा, अच्छा था, अच्छा आदमी था, वो तो घर में रहता तो अपना बीवी बस बच्चा से लड़ाई करके चलो भाई लड़ाई भी हुआ तो ऐसा हुआ, वैसा तो नहीं। और उतना उसका अगर फांसी लगता तो वैसा तो नहीं होता, वो पूरा तो जैसा खड़ा था तो खड़ा था और उसको फिर ऐसा बात था तो ये लोग जाइबे कर रहा था तो नहीं ना उसको वहाँ से उतारना चाहिए, ये लोग देखता।
इस बीच सरकार ने बाघमारा के डीएसपी समेत 3 अधिकारियों को तत्काल रांची मुख्यालय तलब कर लिया है। इंस्पेक्टर की पत्नी को 10 लाख मुआवजे के साथ अनुकंपा पर नौकरी देने का भी निर्देश दिया गया है। इस बाबत मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार बताते हैं,
समिति का गठन किया है जिसमें सुरेंद्र सिंह मीना मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव हैं और डीआईडी के ईडी जी हैं अजय कुमार सिंह। यह समिति अपना प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर सरकार को देगी। विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि किन परिस्थितियों में पदाधिकारी की मौत हुई। दूसरा, सरकार ने उनको उनके परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है और उनकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी लिए जाने का भी निर्णय यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया।
बहरहाल थाने में पुलिस अधिकारी की इस तरह की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। जांच रिपोर्ट आने तक हकीकत का इंतजार किया जा सकता है। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
और अब रांची के बाद चलते हैं पटना। बॉलीवुड में पाकिस्तान को केंद्र में रखकर न जाने कितनी फिल्में बनी हैं और उनमें से अधिकतर फिल्में अपने दौर में हिट रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान कनेक्शन हिंदी की तरह भोजपुरी फिल्मों में भी हिट हो रहा है? आखिर क्या है इसकी वजह, तलाश रही हैं पटना से सीटू तिवारी।
साल 2015 में आई पटना से पाकिस्तान, इसके बाद मई 2016 में आई ले आईबू दुल्हनिया पाकिस्तान से, और इस फिल्म के बाद दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से तिरंगा पाकिस्तान में, इलाहाबाद से इस्लामाबाद और गदर आने की तैयारी में है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द बुनी इन फिल्मों का भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फैशन से चल पड़ा है। अब जरा इन फिल्मों की संवाद सुनिए। आखिर पाकिस्तान पर केंद्रित फिल्में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अचानक क्यों बनने लगी, ये सवाल पूछने पर सिने सोसाइटी पटना के अध्यक्ष जयमंगल देव कहते हैं कि राष्ट्रवाद को लेकर के जो बहस देश में इधर 2 साल से चल रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री उस बहस से उठ रहे उन्माद को भुनाने की कोशिश में है।
2 वर्षों में हमारे यहाँ जो माहौल एक बना है, राष्ट्रीयता छद्म राष्ट्रीयता, समाज में भी जिस तरह की उछल पुछल, कभी असहिष्णुता के नाम पर किसी खास जानवर के मांस को लेकर, इसको भुनाने की कोशिश करते रहते हैं ऐसी जो फिल्में बनाने वाले लोग हैं।
बता दें, भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री में से एक है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। भोजपुरी फिल्में सिर्फ बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश में ही नहीं देखी जाती, बल्कि जहां कहीं भी भोजपुरी भाषी गए वहां इन फिल्मों का बड़ा बाजार है। क्योंकि इसके दर्शक आम तौर पर कम पढ़े लिखे और मजदूरी करने वाले लोग हैं, इसलिए इस इंडस्ट्री में छोटे बजट की फिल्में बनती हैं। इन छोटे बजट की फिल्मों का मकसद मुनाफा कमाना होता है, इसलिए इंडस्ट्री सेट फॉर्मूले पर चलती है। बीते साल जब पटना से पाकिस्तान और इस साल जब ले आईबू दुल्हनिया पाकिस्तान को देखने वालों ने हाथों हाथ लिया, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान के नाम पर फिल्म बनाने का फैशन से चल पड़ा। ले आईबू दुल्हनिया पाकिस्तान से के हीरो विशाल सिंह कहते हैं,
फिल्में कंप्लीट है पाकिस्तान के नाम पे है, कुछ लाहौर के नाम पे है, कुछ इस्लामाबाद के नाम पे है। जस्ट बिकॉज ऑफ की जो अभी मेरी फिल्म थी ले आई बू दुल्हनिया पाकिस्तान से, इसका जो रिजल्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसको देख के लोगों ने बनाया।
इंडस्ट्री में विलेन को पाकिस्तान का दिखाकर मुनाफा कमाने की होड़ सी चल पड़ी है। हालांकि बातचीत में इन फिल्मों से जुड़े लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का रिश्ता पर्दे पर उतार रहे हैं, लेकिन अगले ही पल ये कहने से भी गुरेज नहीं करते कि हमारे बेकसूर फौजियों को मारा जाएगा तो नफरत तो पैदा होगी ही। दुल्हन चाही पाकिस्तान के निर्देशक राजकुमार पांडे के शब्द।
हमारे इतने बड़े बड़े फौजियों को, हमारे गुनाह लोगों को जिस तरह से मार दिया जाता है, इतने मेहनती जो रात दिन पड़े हुए सरहद के ऊपर वो मारे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉमन मैन का भी एक खून खोलता है और लगता है कि ऐसा क्यों।
वही पाकिस्तान शब्द से जुड़ी तीन फिल्मों के गीतकार प्यारेलाल यादव इसको भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के जरिए बयां करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान शब्द जज्बात उभारता है और यही उभार हमें बिजनेस देता है।
जिस रोज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, इतनी जनता उतावली होकर के देखती है, तो ये मान के चलती है कि ये दोनों देश आपस में दुश्मन है, तो आपस में दुश्मन कैसे लड़ते हैं। अगर पाकिस्तान से हिंदुस्तान का जुड़ा हुआ अगर कोई फिल्म है तो उसको भी देखने के लिए उतने ही लोग उत्तेजित होते।
इस बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस कड़वाहट पर कोई लगाम क्यों नहीं लगती। इसका जवाब जयमंगल देव देते हैं। वो कहते हैं कि इलाकाई सिनेमा उस पड़ताल से नहीं गुजरते जिस पड़ताल से हिंदी सिनेमा गुजरता है।
जो क्षेत्रीय सिनेमा है उसकी पड़ताल नहीं होती जिस तरह से कि हिंदी सिनेमा की पड़ताल या उस पर विश्लेषण या उस पर चर्चा होती।
भारत पाकिस्तान के रिश्तों में फिल्मों का रोल बहुत अहम है, लेकिन इस अहम रोल को जहां बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों से मजबूती मिलती है, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में पाकिस्तान के नाम पर उन्माद फैलाने की ये कोशिश उस रिश्ते को कमजोर भी कर सकती है। सीतू तिवारी, BBC, पटना।
तो ये तो थी पटना से सीतू तिवारी, जो बता रही थी कि इस तरीके से कि पाकिस्तान के केंद्र पर अब भोजपुरी फिल्में भी बन रही हैं। लेकिन वसतुल्लाह खां की डायरी पाकिस्तान से आज आने वाली है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अखबारों की समीक्षा की। और मेरे साथ ही प्रभात पांडे तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी प्रभात, बताएँ।
जी, अखबारों में चीन, भारत, RBI और रघुराम राजन छाए हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे हाथ में है, ये कहता है कि आज जब बाज़ार खुलेगा तो रघुराम राजन, जो रिज़र्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के पद से हटने का जो फैसला है उसके बाद बाज़ार के गिरने की आशंका है, ये खबर छपी हुई है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अर्जेंटीना की वेनेजुएला पर क्वार्टर फाइनल पर जो 4-1 से जीत है उसको पहले पन्ने पर जगह दी है। और इस
हिम्मत की बात है, अमूमन खेल की खबरें अगर भारत उसमें शामिल ना हो तो पहले पन्ने पर जगह पाना
जी
बड़ी बात है।
दरअसल इसमें फुटबॉल स्टार मेसी ने गोल किया था और मेसी भारत में भी खासे पॉपुलर है, शायद इस वजह से उन्होंने जगह दी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी कहता है कि अब रेल मंत्रालय जो है वो वाराणसी से दिल्ली तक भी एक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है और 782 किलोमीटर का ये सफर, ऐसी संभावना है कि ये 3 घंटे से भी कम समय में पूरी कर लेगी। हिंदुस्तान में खबर, राहुल गांधी 46 साल के हुए, नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनको बधाई दी, ये खबर छपी है। इसके अलावा योगाभ्यास चल रहा है 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, राजपथ पर इसके लिए योग की प्रैक्टिस हुई, उस पर बाबा रामदेव ने भी हिस्सा लिया और वो उछलते कूदते नजर आ रहे हैं, उनकी फोटो केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के साथ है। और साथ ही उन्होंने मुसलमानों को ये सुझाव दिया कि भाई योग आप करें और अगर आपको ओम बोलने में आपत्ति है तो आप आमीन बोल लें लेकिन योग करें। इसके अलावा
ये तो अच्छी बात है, हाँ।
ये उन्होंने सुझाव दिया, कहा कि योग से परहेज मत करिए, ओम से परहेज करना है तो आमीन बोल दीजिए। इसके अलावा द स्टेटमेंट अखबार में खबर छपी है कि नीतीश कुमार ने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है कि योग तो ठीक है, उससे स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन पहले आप बिहार की तर्ज पे पूरे भारत में शराबबंदी लागू करवाएं, क्योंकि जो शराबी आदमी है उस पर योग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने एक तरह से चुनौती दी है,
लेकिन इसमें कानूनी पहलू यह है कि ये राज्य का है, इसलिए हर राज्य को अलग अलग फैसला करना होगा, ये केंद्र सरकार के अधीन चीजें नहीं आती। बहरहाल ये एक सुझाव दिया है नीतीश कुमार ने। जी,
इसके अलावा एक छोटी सी खबर का जिक्र, दैनिक भास्कर में जो क्रिकेटर ईशांत शर्मा है उनकी सगाई की खबर को पहले पन्ने पे जगह दी है। उन्होंने बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रतिमा सिंह से सगाई की है, यानी कि अपनी लंबाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लंबी दुल्हन चुनी है।
बहुत शुक्रिया प्रभात आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वसतुल्लाह खां ने आज अपनी डायरी में क्या भेजा है पाकिस्तान से, अब सुनते हैं।
जब मैं और मेरे बच्चे एक छत तले रहते थे तो ये दुनिया भी इस छत के बराबर थी। इस छत ने दो इंसानों से चार आत्माओं को जन्म लेते, उन्हें बढ़ते, हंसते, रोते, खिलखिलाते, रूठते देखा और उनकी दुनियाएं उनके साथ उगते देखी। इन दुनियाओं में मेरे बच्चों के हम उम्र दोस्त, मसरूफियात, फरागत, मोहब्बत, नफरत सभी कुछ लहलहाता था। और फिर एक दिन लगा जैसे सर्कस का शो ख़त्म हो गया, जैसे किसी खूबसूरत फिल्म के मुकम्मल होने के बाद अचानक से सिनेमा के पट खुल गए, जैसे कोई ख्वाब नींद के बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। छत के नीचे फिर से दो इंसान रह गए, बच्चों और उनके हमजोलियों को उनकी मसरूफियात गले में बाहें डाल के अपने साथ ले गईं। कुछ दिन तो अंदर बाहर सन्नाटा रहा, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने सन्नाटे को ही गोद ले लिया है। अब हम उसके नाज उठाते हैं, बातें करते हैं। सन्नाटा डिस्टर्ब हो जाता है अगर कभी कभार कोई कार्ड, कोई ख़त, कोई पैगाम किसी के हाथों आ जाए। उसमें वही एक तरह की बातें, अब्बा कैसे हो, मैं जल्दी आऊँगा, आई मिस यू एंड अम्मा अलॉट, वगैरह वगैरह। एक तो ये नई पीढ़ी जितना टाइम आई मिस यू लिखने में खपाती है, इससे आधा टाइम लगा के अगर चाहे तो हमसे मिल भी सकती है। पर नई दुनिया के झंझट शायद हम बूढ़ों की समझ से बाहर हैं, वरना जी तो उनका भी चाहता ही होगा। अच्छा है कि पश्चिम वालों ने फास्ट फूड और जीन्स के साथ साथ हैप्पी फादर्स डे, मदर्स डे भी ईजाद कर लिया। साल में एक दिन याद रखने की सहूलत हो गई। 364 दिन अगर हैप्पी फादर या मदर डे होता तो किसे याद रहता। अब मैं वो वाला रोतू, घिसा पिटा, चिरांदी बुड्ढा तो हूँ नहीं जिसकी कहानी मैंने साल भर पहले किसी से सुनी थी कि एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे अपना मोबाइल फ़ोन लेके गया और मैकेनिक से कहा कि ठीक कर दे। मैकेनिक ने उलट पलट के देखा और बुड्ढे से कहा, अंकल ये मोबाइल तो बिल्कुल ठीक है, सिग्नल भी पूरे हैं। बुड्ढे ने कहा, बेटा अगर ठीक है तो पिछले दो महीने से मेरे बच्चों की कॉल क्यों नहीं आती। जिस चीज़ की जानकारी ना हो उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे जज्बे जानने से जुड़े हैं। जैसे यही कि मैं एक बाप हूँ और मेरे चार बच्चे हैं और इनमें से कोई ना कोई ज़रूर फ़ोन करेगा, ना भी करे तो क्या फ़र्क पड़ता है, यही क्या कम है कि वो जहाँ भी है अपनी दुनिया में मस्त है। इन ख्यालों के साथ रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई और अभी अभी जब मैं उठा तो सिरहाने पड़े मोबाइल फ़ोन पर नज़र पड़ी, कोई मिस कॉल नहीं थी। मगर आएगी ज़रूर, ऐसा भी क्या उतावलापन, न्यूयॉर्क और कराची के दरमियान वैसे भी 10 घंटे का फ़र्क है। अभी तो न्यूयॉर्क में मंडे शुरू होने में कई घंटे बाकी हैं, ना भी आई तो ख़ुद को हैप्पी फादर्स डे कहने में ज़बान घिस जाएगी क्या। आखिर को बाप हैं, क्यों नहीं कह सकते ख़ुद को हैप्पी फादर्स डे भला, है जी।
तो हैप्पी फादर्स डे। बहरहाल इन जज्बों को सिर्फ और सिर्फ वसतुल्लाह खां की कलम और उनकी ज़बान ही दे सकती है वजह। और अब वक्त हो चला है प्रमुख समाचारों का।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में मुसलमान नागरिकों की प्रोफाइलिंग होनी ज़रूरी है। इराकी सेना के फलूजा शहर पर कब्जे के बाद भारी संख्या में नागरिकों के पलायन से मानवीय आपदा का खतरा पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायता कार्यकर्ताओं ने यह चेतावनी जारी करते हुए कहा कि संघर्ष के बाद करीब 80,000 लोग फलूजा छोड़कर चले गए हैं। यूरोपीय फुटबॉल संघ यानी यूएफा ने यूरो 2016 में हंगरी, बेल्जियम और पुर्तगाल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। इन देशों के समर्थकों के हुड़दंग और उपद्रवी बर्ताव की वजह से तीनों देशों के फुटबॉल संघों पर आरोप तय किए गए हैं। सीरियाई कार्यकर्ताओं का कहना है कि तुर्की के सीमा सुरक्षा बलों ने कम से कम 8 सीरियाई शरणार्थियों को मार गिराया है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। सीरिया ने इन आरोपों से इनकार किया है। उत्तरी रूस के कारेलिया में स्याम जोरो झील में एक नाव के डूबने से कम 11 बच्चे और एक वयस्क की मौत हो गई। यह हादसा शनिवार को उस वक्त हुआ जब नाव पर पार्टी चल रही थी और तूफान आ गया। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।